हाथ जोड़ लेंगे और मन को भगवान के चरणों में लगाना है। मन एकाग्र हो जाए ताकि भगवान की कथा को सुन सके और भगवान की कथा हमारे हृदय में रह जाएगी तो फिर संसार के सब दुख तकलीफ हमारा कुछ कर नहीं सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंदगोपकुमाराय।
नंदगोपकुमाराय।
गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभो नित्यानंद।
प्रभो नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्री अद्वैत गदाधर।
श्रीवास आदि।
श्रीवास आदि।
गौरभक्त वृंद।
गौरभक्त वृंद।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम।
हरे राम हरे राम।
राम राम हरे हरे।
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो उमेश महेश अमित अमित और भूमिका के घर पे आज रविवार को छुट्टी के कारण आप सब लोग पधारे हैं कि थोड़ी देर के लिए जीवन को सार्थक करने के लिए को भगवान के शब्दों को सुन लें। तो इनका धन्यवाद करते हैं कि हमको सेवा का अवसर दिया और आप सब भी यहां पधारे हैं। भगवद गीता का एक 16वां अध्याय है, उस अध्याय का नाम है देव असुर विभाग योग। उसमें भगवान लिखते हैं दिवाओ इमाओ पुरुष लोके। दिवाओ इमाओ सर्ग। दिवाओ इमाओ सर्ग। इस दुनिया में दो प्रकार के मैंने सर्ग का मतलब सृष्टि की है। देव असुर एवच। कुछ देवता स्वरूप है और कुछ असुरी प्रकृति के लोग हैं। तो अनादि काल से देव और असुर ये दो प्रकार की प्रकृति भगवान कहते हैं मैं सृष्टि करता हूं। और अर्जुन को कहते हैं देव देवी प्रकृति विमोक्षणाय। अगर आपके जीवन में देवी प्रकृति देवताओं के गुण पैदा करोगे तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। आसुरी अगर आसुरी प्रकृति में जाओगे देवी प्रकृति विमोक्षणाय आसुरी निबद्धा मते। आसुरी प्रकृति के आश्रय लोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। और फिर भगवान ने पहले तो देवी प्रकृति के गुण बताए हैं और फिर अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको तो देवी प्रकृति के गुण है, लेकिन आओ तो अब आपको असुरी प्रकृति के गुण सुनाता हूं। अब ये कर इसलिए बात कर रहा हूं कि प्रायः लोग इस वक्त दुनिया के अंदर असुरी प्रवृत्ति से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो वातावरण इस वक्त चारों ओर दिख रहा है उसमें लोग मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिनेमा घर में जाने के लिए बहुत बड़ा उनको उत्साह है कि चले जाएंगे। मंदिर मस्जिद खाली मिलेंगे भरे मिलेंगे। मद्यशाला शराब के शाम को 9 बजे के बाद बार सारी भरी मिलती हैं और मंदिर सारी खाली मिलती है, ये तो सब देखने में आता है ना सामान्य। कारण क्या है इसका? कि लोगों की प्रवृत्ति असुरी हो गई, और वो असुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को बहुत दुखी करते हैं। इस वक्त जो दुबई के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर हवाएं उड़ी हुई दिख रही हैं कि सारे बिल्डिंग बंद हो गई काम होने का, ये काम बहुत बड़े असुरों का है जो सारे लोगों को दुखी कर रहे। बेचारे गरीब लोग जो आए थे काम करने, वो जो घर के गहने गिरवी रख के वहां से और यहाँ काम करने के लिए आए थे कि भाई 3 साल हम जाके दुखी सुखी गर्मी में मर के पेट पालेंगे, वो बदमाशों की उनकी बदमाशी, कहीं कहीं के पैसा कहीं नहीं गया, इस जेब से निकाल के इस जेब में रखा है कि उड़ के तो नहीं गया ना, हवा में तो नहीं गया होगा ना, कहीं समुद्र के समुद्र तो नहीं खा गया ना। लेकिन कुछ लोगों का ये असुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को दुख देने में उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको कि दूसरे लोग दुखी हो जाए। तो ये असुरी प्रवृत्ति के लोग जब बढ़ते हैं तो सामान्य बेचारी जनता बहुत दुखी हो जाती है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताते हुए कहते, अरे अर्जुन आप ऐसे करो, इस भगवत गीता का प्रचार करने का काम किसी के हवाले करो, मैं इसलिए आपको ये भगवत गीता बता रहा हूं ताकि ये गीता लोग सुनेंगे तो उसकी प्रकृति दैवी हो जाएगी, नहीं तो असुरी प्रकृति इस दुनिया में किसी को जीने नहीं देगी। ये कलयुग का बहुत बड़ा भयानक समय आ रहा है और इस कलयुग के समय में असुरों का बोलबाला होगा। अब भागवत के पहले स्कंद में इस समय का वर्णन लिखा हुआ है, प्राय अल्प आयुष है। एक तो प्राय लोगों की उम्र कम होती जाएगी, अब कम नहीं होंगे तो भी थोड़ी सी बीमारी से जल्दी मरने की तैयारी होना ही, आजकल सबसे ज्यादा लोग आजकल हार्ट अटैक अचानक 40 साल से छोटी उम्र में परेशानी आ गई, जो पहले कभी सुना नहीं था वो अभी होने लगा है। अल्प आयुष है तो लोगों की एक तो आयु कम होती जा रही है, मुझे दूसरा क्या है, दुर्मति, एक तो उनकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है। पुराने जमाने में गायत्री मंत्र, पहले जमाने में भारत में सब गायत्री मंत्र उच्चारण करते थे, उसमें क्या था, धीमहि, भगवान हमको बुद्धि दीजिए। भगवान से लोग बुद्धि मांगते थे पहले, कि बुद्धि अगर हमारे पास आ जाएगी। चाणक्य पंडित कहा करता था कि भगवान दुनिया का सब पद प्रतिष्ठा लेनी है तो ले लेना, मुझे मंत्री का पद भी नहीं चाहिए, मुझे सम्मान ये ले लो, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे पास रहने देना, अगर बुद्धि होगी तो मैं दुनिया दोबारा मेरी बना लूंगा। तो बुद्धि भगवान से लोग मांगा करते थे, अब भगवान से लोग कुछ और ही मांग रहे हैं, बुद्धि कोई नहीं मांग रहा है, बुद्धि प्राय लोगों की भ्रष्ट होती जा रही है। और भगवान भगवत गीता में तो ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मैं दे सकता हूं लेकिन कोई बुद्धि लोग लेने आए ना मेरे पास, तो मेरे पास कोई बुद्धि योग लेने आता नहीं है। असुरी प्रवृत्ति के लोग जो है उनका विचार ये है कि अभी मेरे पास इतना है और ज्यादा इकट्ठा कैसे करूं, पहली उसकी सोच ये है। इदो मैं अद्य, आज मेरे पास इतना है, पुनर्धनम, और दोबारा धन मेरा कहां से आए, ये मेरा शत्रु अभी है, इसको तो मार दूंगा, दूसरा पैदा होगा तो उसको भी जीने नहीं दूंगा। तो ये प्रकृति अब देखो रोज मारामारी हो रही है दुनिया के अंदर, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, और भगवान कहते हैं ये मारना, वो उनको ये भी मालूम नहीं है कि मैं परमात्मा के रूप में जिनको मारते हैं उनके हृदय में बैठा हुआ हूं। असुर तो मेरे को भी कष्ट देते, और फिर एक बहुत अच्छा असुरी प्रवृत्ति के लोगों का एक गुण लिखा है, अवगुण इतना सुंदर लिखा है भगवान ने, कि ये लोग जब बहुत धन हो जाता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कभी धर्म का ढोंग करते हैं, बहुत बड़ा हो ऐसा आयोजन करके बताते हम तो बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कुछ और ही होता है। तो ये लोगों को थोड़ी देर के लिए झांसा देने के लिए असुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे भी बड़े धार्मिक आयोजन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मन में भाव दूसरे के हित और कल्याण का नहीं है। तो आवश्यकता इस वक्त क्या है कि असुरी प्रकृति का प्रभाव इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि अब इसको कैसे कम किया जाए। कलयुग का समय जितना आगे हम बढ़ेंगे उतना और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। आपने भागवत में पहले स्कंद के 16वें अध्याय के बाद महाराज परीक्षित का कलयुग से भेंट होता है, उसका वर्णन है। महाराज परीक्षित का कलयुग से भेंट होता है और कलयुग को हमारा परीक्षित हरे कृष्ण आइए। पड़ोसी है क्या?
हरे
कृष्णा। ये इनका घर तो उधर है,
मंदिर के पास।
मैं घर भी गया था 2 साल पहले।
आप 2 साल पहले जब आए थे इन दोनों ने यहाँ का अरेंजमेंट किया
था। अब अरेंजमेंट करने का प्रबंध हो गया तो ये अरेंजमेंट के बाद प्रसाद के समय पे भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्होंने इसलिए अरेंजमेंट किया था कि आपके घर में कोई आ जाए, अब आ गई है तो इनको कोई चिंता नहीं है। तो बहुत अच्छा, बात कर रहे हैं असुरी प्रवृत्ति और देवी संपदा। ये 16वें अध्याय का जो वर्णन है इसमें इस वक्त देवी संपदा के लोग बहुत कम दिख रहे हैं और असुरी संपदा के लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपको अगर अब 50 घरों में जाइए अपने जो जानने वाले हो, बाय दिवे 5 घरों में भगवान का मंदिर मिलेगा, लेकिन प्राय घरों में मंदिर की जगह पे बहुत सजा हुआ अल्टर मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर भगवान की मूर्ति नहीं होगी, लेकिन बहुत अलग अलग छाप की बोतलें ऐसे सुंदर नमूने लगा के रखी होंगी कि मंदिर की जगह किसने लिए बड़े। और अब जाके देख लीजिए, पता लग जाएगा। और बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि भागवत में लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत में जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली, जब तलवार कलयुग गाय और बैल को मार रहा था और बैल एक पांव पे खड़ा था, तो कलयुग ने शरण ले लिया, बोला महाराज जीवन दान दो। बोला जीवन दान दो तो आप बच सकते हो, लेकिन यहां रह नहीं सकते मेरे राज में। बोला क्यों? मेरा समय आ गया। बोला यहां तो मैं रहने का अधिकार नहीं। बोला कोई तो जगह दो रहने के लिए। तो पहली जगह जो रहने के लिए कलयुग को परीक्षित महाराज ने दी वो दिया सुरापान। सुरापान का मतलब है जहां मद्यपान होता है, जहां नशा होता है, उस स्थान पे कलयुग तुम जाके अपना निवास स्थान बनाओ। कलयुग कहता महाराज आपके राज में तो ये मिलेगा नहीं, और कोई स्थान दे दीजिए। सूना जहां पशु हत्या होती है, जहां मांसाहार होता है, जहां बिल्कुल इसको कहा जाए मोस्ट हम्बल एनिमल ऑन द प्लैनेट लाइक काउ, बहुत निम्र है वो। लोग किसी पुराने जमाने में कहा बात होती थी, कोई कहता था कि मैं गऊ हूं, गऊ हूं का मतलब अपने आप को बहुत छोटा कहता था, तो कहता मैं गऊ हूं। तो ऐसे पशु की हत्या जो दूध देता है, मां की स्थान जिसका मां के बराबर है, 8 माताओं का जहां वर्णन है वेद में, उसमें एक गौ माता कही गई है, पृथ्वी माता है, गौ माता है, अपनी माता, गुरु की पत्नी माता, दूध पिलाने वाली माता। तो ये माताओं में एक माता गौ का भी वर्णन शास्त्रों में आता है और उसकी हत्या हो रही है। और थोड़ा सा कहीं प्रकृति का कोप होता है तो सारा संसार बहुत चिल्लाने लगता है कि अरे अरे यहां तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अरे जुल्म क्या हो रहा है, रोज कितने पशु मर रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, कभी उसका किसी ने हिसाब किया है? जब भी इनडिस्क्रिमिनेटिव एनिमल किलिंग हो रही है तो उसका परिणाम के रूप में लोगों को ऐसे आतंकवाद का भी सामना करना पड़ेगा। द क्यूम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ स्लॉटर ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट एनिमल स्लॉटर, और पर्टिकुलरली गाय। सो महाराज परीक्षित ने कहा कि आप जाके जहां नशा होता है वहां रहिए, नहीं तो वहां जगह नहीं आपके लिए है। तो फिर आप जहां पशु हत्या होती है विशेष रूप से वहां जाके निवास कीजिए। कलयुग ने कहा महाराज जगह तो ये भी यहां मुझे नहीं मिल रही है। तब पारा महाराज परीक्षित ने कहा विभचार, विवाह के संस्कारों से जहां लोग वंचित हैं और पशु के तरह पशु जैसे कुत्ता कुत्ते जैसे घूमते हैं, ऐसी तरह आपस में बाजार में खड़े हुए आलिंगन करते घूमते हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर कलयुग तुम जाके अपना शासन करो। और अभी कोई पाश्चात्य देश में तो गया होगा तो ये कुछ कोई सभ्य व्यक्ति अपने बच्चों के साथ तो घूमने जा नहीं सकता। एक प्रोफेसर मेरे को मिला, मुझे बोला मैं गया था किसी मीटिंग में, मुझे जाना पड़ रहा था, मैं अभी यूरोप और अमेरिका से होकर आ रहा हूं, लेकिन میں نے غلطی کی کہ میں اپنی جوان بچی کو ساتھ لے گیا تھا گھمانے کے لیے کہ بازار میں کہ شہر میں کہیں جانے جیسا ماحول تو ہے نہیں بچوں کے ساتھ, جائیں کدھر جائیں کس طرح, چاروں اور ایسا واتاورن. کسی نے مجھے یہاں کہا کہ تین آپ ڈھائی تین بجے دبئی میں آپ کے ایل این سینٹر کے چاروں اور دیکھنا کہ گھوڑوں کے اوپر پولیس والا لوگوں کو بھگا کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن کہنے کا ہے کہ ایسا واتاورن خراب ہوتا دنیا کا جا رہا ہے کہ کل جو کو چوتھا استھان جب کل جگ نے کہا یہ بھی مہاراج استھان نہیں ہے, تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ جوا کے استھان کے اوپر جا کے اپنا راج کرو, اور یہ جتنا بھی آپ کے یہاں کرائسس ہوا ہے دبئی میں اس کا دوسرا نام ہے گیمبلنگ, یہ اسپیکچولیٹو گیمبلنگ تھی. بول گیمبلنگ کا مطلب کیا ہے, پیسہ دا پہ لگاؤ تمہارا ہو سکتا ہے تمہارے کو ملے ہو سکے نہیں ملے, تو آپ نے 600 کی چیز کے 3000 داؤ لگایا تھا, دو مہینے میں دیا تو آپ نے 5 روپیہ بھی نہیں دا. اب وہ تو ٹھیک ہے کبھی ہار جاؤ گے کبھی جیت جاؤ گے, ہارے تو رو کیوں رہے ہو, جیتتے تو روئے نہیں, تو دونوں تو دونوں دونوں بھی تو آپ کو ہی بھگتنے بھگتنے پڑے گا, دوسرے کسی کو تو نہیں بھگتنا پڑے گا. یہ جوا ہے, ہارڈ ارننگ محنت تو مزدوری تو ہے نہیں, جسٹ گیمبلنگ اسپیکولیٹو گیمبلنگ. تو یہ چار استھان کلجگ کو رہنے کے لیے مہاراج پرکشت نے دیا, اور کلجگ کے پل کوئی استھان نہیں تھا, لیکن آج کے دن یہ چار چیزوں کو آپ دیکھیے کہ گلی گلی میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ چیزیں آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہوں. کلجگ کا راج آپ کو چاروں اور دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے, وہ بھارت کے وہ دھرم کی بھومی ہے, اس کے اندر بھی آپ کو جگہ جگہ پرمٹ صاف دکھا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے 15 اور 18 سال کی عمر کے بچے سارے عام شراب پیتے ہیں, شراب اور کہاں, میں ابھی موریشس کی بات بتا رہا ہوں, وہ ہمارے سندھ سے ریونیو کا ہیڈ تھا سدھاما لال صاحب, وہ موریشس نے اس کو ہائر کیا ہے ایز اے ریونیو کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ موریشس ریونیو کا, مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں نیم ہے کہ شراب کا دکان کسی اسکول یا مندر کے نزدیک میں نہیں ہونا چاہیے مسجد کے, تو میں نے لکھا بھائی کتنا 200 فٹ 500 فٹ کوئی تو پوچھ تو لکھو نا, ایسے نزدیک کیا مطلب, تو انہوں نے بولا یہاں تو سب مندر ہی ہے کہاں کھولیں گے دکان لوگ, تو میں نے بولا دیکھو 150 آدمی کے اوپر ایک دکان ہے اور 150 استریاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ, تو استریاں تو شراب نہیں پیتی ہوں گی, تو منسٹر کہتا ہے اس شراب کیوں نہیں پیتی ہے, پیتی ہے نا, وہ منسٹر کہہ رہا ہے وہ استریاں بھی تو پیتی ہے نا, تو 150 آدمیوں کے اوپر ایک دکان شراب کا ہے, وہ موریشس کا اتنا 1.2 ملین 12 لاکھ کی آبادی کے اوپر 150 کے اوپر ایک دکان ہے, آپ سمجھ لیجیے کتنا شراب کرے عام ہے, اور ایج گروپ کون سا ہے, ٹین ایج, کالج اور یونیورسٹی, اور شرم سے وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دربھاگیہ ہے کہ ہم بھارت کی سنسکرتی کو چھوڑ کے آئے, اب ہمارا حال یہ ہے کہ کالج میں پڑھنے جاتے ہیں اگر ہم شراب سگریٹ نہیں پیتے ہیں اور ہماری کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے کلچر میں رہ نہیں سکتے ہو, آپ پاگل یا مورکھ ہو, پہلے زمانے جو یہ کام کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ بدماش ہے, اب جو نہیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تم بہت بڑا بدماش ہو, یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا میں جب الٹا کوئی کہنے لگے تب سمجھ لو کہ تمو گن کا بول بالا ہے, یہ تموگن اتنا چاروں اور سے پھیلا ہوا ہے کہ غلط چیز کو ہم نے صحیح مانیتا دے کے رکھ دی. آپ کو تو آشچر لگے گا, آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے کہ سبھی گھروں میں چائے اگر بنتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نشائی کا گھر ہے, اس کے گھر میں مت جانا, 50 سال پہلے میری آنکھوں سے دیکھے ہوئے چائے کسی گھر میں بنتی تھی بولا یہ تو بابا نشائی ہے, اور اب جس گھر میں دنیا کے سارے نشے کی چیزیں نہیں ہیں وہ گھر ادھورا سمجھا جاتا ہے. ایک سروے کی گئی تھی امریکہ میں کہ 1960 میں اسٹوڈنٹ اسکول میں کیا ڈسٹربنس کرتے تھے ٹیچر کو, تب لکھا ہے کبھی کبھی खिड़की को बजाते थे या टेबल को खुड़खुड़ करते थे या सीटी बजाते थे। ये 64 में स्टूडेंट डिस्टर्बेंस स्टूडेंट में करते थे स्कूल में जाकर, और 96 का या 90 अर्ली 90 का रिसर्च ये है कि स्टूडेंट गन्स लाते हैं स्कूल में, एम्यूनेशन लाते हैं, ड्रग्स हैं, टीनेज प्रेगनेंसी है और मर्डर है। तो कितना डिग्रेडेशन हुआ है एजुकेशन और जो भी टीनेज के ग्रुप में। ये दो फिगर्स दोनों तरफ से दी थी कि जो 60 में ये डिस्टर्बेंस उसको बहुत बुरा माना जाता था और अब ये आम हो रहा है और इसको कोई बुरा नहीं कहता है। तो ये बच्चे हमारे ही स्कूल में पढ़ते, किसी और के नहीं, हमारे बच्चे इन स्कूल में पढ़ते हैं। इन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने क्या साधन ढूंढा है? लोग कहते हैं बड़ी बहुत हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, दुनिया के अंदर कोई भी चीज कहीं होती है हमें पता लगता है, रात को भी हम नेट के ऊपर देखते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन किसी बुद्धिमान ने कहा है दुनिया की सब चीजों का पता है लेकिन तुम्हारा लड़का लड़की रात को कहां होता है इसका पता है तुम्हें? पूरी दुनिया के बारे में जानते हो लेकिन अपने घर के बारे में नहीं जानते, तुम्हारी कम्युनिकेशन इतनी फैली हुई है कि तुम्हारे घर का पता नहीं लग रहा। कारण क्या है इसका? कारण है स्पिरिचुअलिटी का अभाव, जिससे मॉरलिटी आपकी स्ट्रांग हुआ करती थी, जिससे आपका चरित्र का निर्माण होता था। चरित्र का निर्माण जो आपका होने का साधन है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और कोई साधन नहीं। आध्यात्मिकता आपके चरित्र को अटल बनाती है, चरित्र को बहुत पक्का पुख्ता बनाती है कि कहीं भी आप अपने मर्यादाओं को, अपने उसूलों को, अपने प्रिंसिपल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो आपके उसूल भुगड़ों की मूठ कहते हैं चने की मूठ की तरह, तो आपके उसूल कोई उसूल रहा है क्या? अभी लोगों के पास प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रिंसिपल जीवन में होते तो कभी बदलते नहीं है। एक एक बात कहते हैं प्रिंसिपल आर लाइक द लाइट हाउस, दे कैन नॉट चेंज डायरेक्शन। एक हुआ ये था कि सी के अंदर एक लाइट आ रही थी और दूसरी तरफ आर्मी का कैप्टन था, उसकी शिप आ रही थी, तो सामने लाइट को देखकर उसने बोला आई एम आर्मी कैप्टन, यू टर्न 70 डिग्री यूर शिप, आपकी शिप को 30 डिग्री दूसरी तरफ ले जाओ। मेरी बोलता है मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं छोटा सा क्लर्क हूं लेकिन मैं हट नहीं सकता। बोला मैं फायर कर दूंगा, आपको हटना पड़ेगा, मेरा रास्ता क्यों रोक के खड़े हो? बोला मेरे हटना मुश्किल है। तो वो क्रोध से बोलने लगा, तब उसने बोला मैं लाइट हाउस हूं, मैं कैसे हटूंगा? तो शिप को ही हटानी पड़ेगा, लाइट हाउस कैसे हटेगा? तो प्रिंसिपल तो लाइट हाउस है, वो नहीं हटने चाहिए ना। बड़े से बड़े आदमी को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल है क्या जीवन में? हमने कुछ प्रिंसिपल बना रखे हैं? वो रामायण पढ़ते तो हमको मालूम होता प्राण जाए वचन जाए रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए वचन जाए। अभी प्राण तो दूसरी बात है, 100 धर्म मिलते हैं तो 100 बार हम वचन अपना बदलने को तैयार है सुबह से शाम तक। वचन की कोई वैल्यू रह गई है क्या? वचन की वैल्यू कहां रह गई है? ये सब कितना वचन के ऊपर, हमारे इस दुनिया के अंदर सब कुछ वचन के ऊपर ही तो हो रहा है। विश्वास के ऊपर आपका कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब दुनिया वचन के ऊपर चल रही है लेकिन लोग वचनों को पालन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल उनके जीवन में स्थापित हुए नहीं है। वैल्यूज हमारी सारी उड़ती जा रही है। समाज में असुरी प्रवृत्ति बहुत प्रकोप कर रही है, इसलिए आवश्यकता है। इस वक्त भी अभी टाइम गया नहीं है कि वी शुड बी मोर सीरियस। हमको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि क्या हम जा रहे हैं, ये रास्ता ठीक है क्या? जिस रास्ते के हम ये चल रहे हैं क्या ये हमारा रास्ता हमारी भलाई का है क्या? इतना कुछ होने के बाद भी किसी घर में शांति संतुष्टि है नहीं, परिवार में कहीं प्रेम है नहीं, कारण क्या है? बड़ी बिल्डिंगें तो बन चुकी हैं लेकिन लोगों की सोच बहुत छोटी होती जा रही है। नैरो ब्रॉड हाईवेज, नैरो विजन्स, बहुत संकीर्ण सोच हो गई है। पहले उदारता लोगों में होती थी, दूसरे का भला करने, हित करने का भाव होता था, लेकिन जब से ये असुरी प्रवृत्ति का प्रकोप होने लगा है तब आदमी अपने सज्जन पुरुष को भी, अपने मित्र बंधु बांधव को भी दुख सुख में देखने के लिए तैयार नहीं है, टाइम नहीं है उसके पास। कहा अमेरिका के घटना बताते कि घर में बीमार है तो पति बीमार है तो पत्नी डॉक्टर को फोन करके काम पे जाएगी कि डॉक्टर साहब आके पति को देख के जाना, और यहां तक कि कोई मर गया है तो फोन करेंगे तो एम्बुलेंस वाले के इसको ले जाना, इलेक्ट्रिक जो है क्या कहते हैं उसको, जो जो क्रीमेशन का वहां इसको ले जाना, हमारे को तो ऑफिस में जाना है, बाद में आएंगे तो शाम को लोगों से मिल लेंगे। एक पिताजी वापस अमेरिका से लौट के आए, मैंने बोला आप आए क्यों? बोला मेरे बेटे के बच्चा हुआ था तब तो बेबी सिटिंग के लिए कोई आदमी नहीं था तो मेरे को मंगाया था, लेकिन उसने अभी देखा कि मैं मर जाऊंगा तो उसको बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा मेरी आखिरी अंतिम क्रिया के लिए, इसलिए मेरे को वापस भेज दिया। वैल्यूज गई कहां? ये वैल्यूज हमारी गई कहां? क्यों हमारी वैल्यू खत्म होती जा रही है? क्यों क्यों प्रेम का वातावरण कम होता जा रहा है? अगेन सेम आंसर, कि हमने अपना गोल जरा सही निर्धारित नहीं किया है। हमारा गोल क्या, हम लोगों ने गोल क्या निर्धारित किया है? आज प्राय किसी से पूछो आपका गोल है क्या जीवन का, टू अर्न मोर, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दुनिया के सामने पड़ा है, हाउ टू अर्न मोर एट एनी कास्ट, एट द कास्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल सफरिंग वी डोंट माइंड। लाखों लोग मरे हमें कोई, खाने की चीजों में इतनी मिलावट करते हैं, हजारों लाखों लोग मर भी सके तो मर जाए लेकिन हमारा पैसा बचना चाहिए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असुरी प्रवृत्ति का ये बहुत, हमें चाहिए दुनिया मरे तो मरे, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
कोई ये भी तो कोई आदमी है ना जो ड्रग्स चारों ओर से फैला रहे हैं, और हमारे बच्चे का मतलब है नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे का मतलब इंसान के बच्चे खराब हो रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी तबाह हो रही है ना, ये भी इंसान को ही बेच रहे हैं ना ये ड्रग्स, ये एमिनेशन कौन ला रहा है? इंसान काम कर रहा है, इसके पीछे कोई और तो नहीं है? तो कितना इंसान डिग्रेड हो गया है। ये डिग्रेडेशन और बढ़ती जाए इसके लिए कहीं तो रुकावट का बंदोबस्त करना चाहिए ना। कौन करेगा? लोग किसके ऊपर, आप किसके ऊपर देख रहे हैं, कौन करेगा? यू हैव टू डू इट। आप भी इतने ही रेस्पॉन्सिबल है। इफ यू आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देन यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, कर सकते तो आप समस्या के हिस्सा है। सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। अपने घर में तो कम से कम हम वातावरण आध्यात्मिक बना के रखें, बच्चों की सुरक्षा का कोई कवच ऐसा बना के रखें। कल कहते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चे माँ बाप के चरण छूते थे तो माँ बाप के हृदय से आशीर्वाद मिलती निकलती थी, वो बच्चों का कवच हो जाती थी और वो उसको बहुत बुरे से बुरे विकार से बचाने के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती थी। अब घरों के अंदर से ये छोटा सा संस्कार भी लुप्त हो गया। आप बैठे इतने लोग, आप देख लीजिए कि आपके बच्चे आपके घर में आपके चरण सुबह छू के जाते हैं क्या काम पे? नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं? ये परंपरा हमारे अंदर से गई। जो जो मां की आशीर्वाद में जो शक्ति है, वो शक्ति दुनिया के अंदर किसी ताकत में नहीं है। भगवान का छोटा सा नमूना इस संसार में मां है, जो अपने बच्चे के लिए रात जाग सकती है, अपने नींद की परवाह न करके सारी रात स्वयं गीले पे सोने को तैयार है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। उस मां के लिए आदर रह गया है क्या संसार में? जिस शिक्षा, जिस गुरुकुल की शिक्षा से बच्चा जब घर आता था पढ़ के, तो गुरु पहला शब्द कहता था मातृ देवो भव, तेरे लिए मां पूजने है बेटा, उसकी तुम मां मां की देव के समान पूजा करना। ये शिक्षा क्या अभी है क्या हमारे बच्चों में? माता के प्रति बच्चों का ये भाव है क्या आज? नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम है ना। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो विकृत होते जा रहे हैं। तो अभी भी एक जनरेशन को कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये संस्कारों को पुनः अपने परिवारों में लाना पड़ेगा। अर्जुन कहता है भगवत गीता में, अगर कुल की मर्यादाएं नहीं रही तो कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, और कुल का धर्म नष्ट हो गया तो उसका पहला इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ेगा और बड़े बच्चे वर्ण शंकर हो जाएंगे। प्रद्युषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु जायन्ति वर्ण शंकरः। और वर्ण शंकर आतंकवादी होते हैं, जो दुनिया में किसी को सुख से नहीं रहने देते। दुनिया के लिए नींद खराब कौन करता है? वर्ण शंकर पॉपुलेशन, जिसको ये पता नहीं है मेरा बाप कौन है। पाश्चात्य देश का ये हाल है कि लड़के को ये पता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। पाश्चात्य देश का तो ये हाल है कि लड़के को पता नहीं है। बिगेस्ट ट्रामा टू दी यूथ ऑफ दी वेस्ट इज माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं, और उसका रिजल्ट क्या है? ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन व्हिच इज क्रिएटिंग द हैवॉक ऑन द प्लैनेट अर्थ, उसका कारण क्या? कुल मर्यादाएं खत्म हो गई। कुल मर्यादा में छोटे से छोटी मर्यादी होती है कि माँ बाप का जो जो रेस्पेक्ट बच्चे करते हैं वो करना खत्म हो गया। और ये शुरू कैसे होगा? अगर आपसे बड़ा आपके घर में है तो पहले आप प्रणाम करना सीखो, तो आपका बच्चा आपको करेगा। इफ यू प्रैक्टिस देन द चिल्ड्रेन यू हैव नॉट टू टेल देम एनीथिंग, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करेंगे, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। गांधी के पास कोई एक व्यक्ति बच्चे को ले गया था, गर्मी के दिन है मई जून के, बच्चा गुड़ खाने की आदत है, बाबा इसको गुड़ के लिए मना करो, आंखें दुखेंगी इसको, बांधे बोला कल आना। चार बार रिक्शा करके गांधी के पास गया, गांधी जी ने पांचवें दिन बोला बेटा गुड़ मत खाओ, बस चुप हो गया गांधी। उसके बाप ने कहा यही कुछ कहना था बापूजी आपको, तो पांच दिन हमको चक्कर क्यों कटवाए? और गांधी जी ने कहा मैं खुद गुड़ खाता था, चार दिन मुझे छोड़ने में लगे, जब मैं छोड़ूं तब उसको कहूं ना मत खाओ। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम देखो खराब मत होना, सिगरेट मत पीना, लेकिन उसको कहते हैं मेरे लिए पैकेट तो ले आओ बाजार से, छोकर तुम खराब मत होना शराब मत पीना, लेकिन हम खुद उधर बैठ के पीते हैं उसके सामने। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तीन चार साल का बच्चा आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है आपके घर में, और जो आप करते हो उसके ब्रेन के ऊपर उसकी लकीरें छपती जाती है। और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि आप उसको आप जिसको क्या कहा जाता है, आप यू कैन नॉट रियली उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। इज क्लोजली वॉचिंग, और वो देखते हैं कि हमारे अपने घर में ये आपस में माता पिता ही लड़ रहे हैं, तो हम काय के लिए प्रेम से घर में रहेंगे? अथवा घर के वातावरण बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके ऊपर डालता है। और बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, एक मातृ सम्मेलन हुआ था नेपाल में, कोई किस माता जी बोल रही थी, तो यह तो भगवद गीता से एक श्लोक बोला था कि भगवान ने सिर्फ धरती क्षमा नारी नाम, ये नारी के तो 6 लक्षण बहुत सुंदर भगवान ने लिखे हैं, पुरुषों में पता नहीं है कि नहीं है, हा? कि कोमल हृदय होती है, दया होती है, क्षमा होती है, ये नारी के लक्षण है। और फिर उसने कहा लेकिन बच्चों की सुरक्षा अगर नारी नहीं करेगी तो आखिरी कलयुग में किले की दीवार स्त्री है। पुरुष तो बाहर चला जाता है सुबह से बच्चों को संभालने के लिए, आखिरी किले की दीवार स्त्री है, वो अगर नहीं सुरक्षा करेगी तो आपका बच्चों का भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं है। तब उसने एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे इंटेलिजेंट कितने होते हैं, यू कैन नॉट रियली चीट देम। तो बात तो हंसी जैसी है, बाप पति पत्नी फिल्म के ऊपर जाने को तैयार हुए, बच्चे ने बोला मेरे को ले चलो, बोला तुम बहुत छोटे हो नहीं जा सकते, बोला कब जाऊंगा, बोला जब मूछें आएंगी तब जा सकते हो। बच्चे ने माँ की तरफ देखा, बोला इसकी मूछें नहीं है इसको क्यों ले जाते हो, आप उसको धोखा नहीं दे सकते, जब मूछें नहीं है इसलिए तो वो तो सामने देख रहा है कि माँ की मूछें नहीं है इसको क्यों ले जा रहे हो, या फिर यू मस्ट हैव सम सॉलिड रीजन। और बच्चे आपको ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके पास आपके पास उत्तर है ही नहीं, आप निरुत्तर हो। और बच्चे सच बोलते हैं कई बार, वो भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा है कि 2 पेड़ कृष्ण के चरण के स्पर्श से गिरे और नंद बाबा ने आके बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा किसने गिराया, बोला इसने गिराया, बोला ये बच्चे की बात, इतने बड़े पेड़ ये बच्चा कैसे गिराया, अरे हाँ इसने गिराया हमने देखा। बच्चा सच कहेगा तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो इन बच्चों की सुरक्षा के लिए आपके पास कोई साधन है? हम 2-3 दिन से 2 ही बातें कर रहे हैं, माँ बाप को बच्चे का टीका लगाने की कितनी चिंता होती है, हर माँ बाप पोलियो के जो राब पिलाते हो कि नहीं पिलाते हो, बच्चों को टीके लगाते हो कि नहीं लगाते हो जाके, क्यों? बच्चे की फिजिकल बीमारी से बचे, तो उसका दिमाग खराब न हो जाए उसके लिए भी कोई टीका बनाए क्या, कि माँ बाप का वो आदर ना निरादर न करे, ऐसा बिगड़ जाए कि कल हमारे लिए परेशानी हो जाए, सारे हमारे कुल के लिए कलंक हो जाए, ऐसा उसके लिए ऐसा कोई टीका निकला है क्या? ऐसी इम्यूनाइजेशन है क्या दुनिया में कहीं अवेलेबल के हमारे बच्चे बिगड़ने से बच जाए? इसके लिए ये इम्यूनाइजेशन आपके लिए भगवद गीता का शास्त्र और भगवान का नाम कर सकता है। जितनी आपको उस टीके की और इम्यूनाइजेशन की जरूरत है उससे ज्यादा इस इम्यूनाइजेशन की जरूरत है कि बच्चों को बिगड़ने से बचाया जाए। और आप इसका स्वयं अभ्यास करोगे तो बच्चों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओगे, तो बच्चों के सुधारने के लिए अलग प्रयास नहीं किया जाएगा। यू प्रैक्टिस इट, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव त्रोजनः, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है साधारण व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। यद प्रमाणम ते कुरुते, जो भी वो प्रमाण स्थापित करेगा साधारण जनता केवल उसका पालन करेगी। मानो आपके घर के अंदर एकादशी के दिन अन्न नहीं पकेगा, आप नहीं खाएंगे तो 6 महीने का बच्चा भी नहीं खाएगा, अपने आप कैसे खाएगा वो? आपने प्रमाण, घर के मालिक तो आप हो ना, तो पिता घर का गुरु है, बच्चों के लिए पिता गुरु है, स्त्री के लिए पति गुरु है, जो अगर वो प्रमाण जैसा करेगा वैसे घर के अंदर चलेगा। स्कूल में मास्टर जी गुरु है, देश का राजा गुरु है, ये नेचुरल गुरु है, ये अगर अपना काम ठीक करेंगे तो सब कुछ सुधर सकता है। तो हमारा देश का दायित्व हमारे ऊपर नहीं है, स्कूल का नहीं है, लेकिन घर का तो है कि नहीं सबके ऊपर? तो अपने घर के वातावरण को तो ठीक किया जा सकता है, 1/2 घंटा बैठ जाओ रोज, थोड़ा सा मन नहीं करे, विश्वास नहीं हो, फिर भी ऐसे एक दीप जला के घंटी को बजा लिया करो, राम राम कर लिया करो, मुख से ही बच्चे देखेंगे ना, कम से कम छोटी इतनी छोटी बच्ची देखेंगे ना, दूसरे दिन देखा आपने ऐसे ही करना शुरू कर देगी तो एक आदत सी बन जाएगी। और कई आदतें दुनिया में बुरी हमारी पड़ती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है, अरे ऐसी अच्छी आदत पड़ जाए जिसको निकालना मुश्किल हो तो हमारा बहुत बड़ा फायदा। आदत ही तो डालनी है ना, तो बहुत बुरी पड़ गई है तो एक अच्छी भी तो पढ़ने दो ना। ये अच्छी आदत पड़ जाए कि रोज 1/2 घंटा हम भगवान के सामने बैठकर और भगवान का नाम ले लें अथवा भगवान का कोई शास्त्र पढ़ लें, ये आदत हम में पड़ जाए अगर तो क्या कितना फायदा हो जाएगा कि वातावरण ही घर का बदल जाएगा। जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है वहां भगवान होता है, और जहां भगवान होता है वहां वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ का मतलब वहां की सब परेशानियां दूर हो जाती है। कुंठ का मतलब परेशानी होती है, कुंठ का मतलब एंग्जाइटी होती है, कुंठ का मतलब दुख तकलीफ होता है। और जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां भगवान होता है। भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये भगवान की वाणी है। ये भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो भगवान की वाणी है। अगर आधा घंटा बैठ के टीवी, दो घंटे, तीन घंटे, ये मैं दुख से कभी लोग कहते हैं अरे घर में क्या आप कहते हैं, अभी बैठ के बच्चों के सामने गीता पढ़ेंगे तो शर्म टाम को आती है। हम कहते हैं टीवी के ऊपर बैठ के आप न देखने जैसे सीन बच्चों के साथ देखते हो तब शर्म नहीं आती, जब आनी चाहिए। और भगवत गीता पढ़ते हुए आपको शर्म आती है, ये आपने कैसे अपने लिए गलत वैल्यू बना रखी है। अब हम तो हिंदुस्तान में कभी देखते हैं कहीं टीवी चलती हुई कि उसको रिमोट से बंद करनी पड़ती है अगर बच्चे बैठे हैं, मानो हमने देखा है, लोगों को नहीं देखने जैसी नहीं होती है। और वहां परिवार पूरा बैठ के देखता है और परिवार पूरा बैठ के कीर्तन करेगा, इसमें हमको शर्म क्यों आता है। आप किचन से बहुत शुद्ध भगवान के लिए भोजन बना के भगवान के आगे रख के 10 मिनट बैठ के कीर्तन करो और प्रसाद खाओ तो ये आपके लिए सबसे बड़ी इम्यूनाइजेशन है। ये आपके ऐसे टीके हैं कि कहीं बुराई आपके नजदीक आ नहीं सकती है। आप जैसे कमल रहता है पानी के अंदर, ऐसे आप इस दुनिया के अंदर चारों ओर कुछ भी होता रहे लेकिन आप कमल की तरह निर्लेप रह सकते हैं। लेकिन ये एक प्रयोग छोटा सा घर में करके देखो कि 10 मिनट हम परिवार वाले प्रसाद लेने से पहले भगवान के नाम का उच्चारण साथ बैठ के करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा